एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कभी ऐसा लगता है कि आजकल हर छोटी बड़ी बात पर लोग जैसे दो खेमों में बंट जाते हैं। खासकर राजनीति को लेकर तो माहौल अक्सर गरमाया ही रहता है। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि हम इतने बटे हुए महसूस करते हैं।
हाँ बिल्कुल, और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है एज्रा क्लाइन ने अपनी काफी चर्चित किताब व्हाई वी आर पोलराइज्ड में। आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे, है ना?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, ये बंटवारा सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, ये शायद हम पूरी दुनिया में थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हैं। क्लाइन की किताब खास तौर पर अमेरिकी राजनीति पर है,
पर उससे हमें वो बड़ी ताकतें समझ आती हैं जो कहीं भी किसी भी समाज को इस तरह बांटने का काम कर सकती हैं।
सही कहा। क्लाइन का जो मुख्य तर्क है वो ये कि ये मामला सिर्फ कुछ आप कह लें खराब नेताओं या लोगों के बुरे बर्ताव का नहीं है।
अच्छा।
हाँ, जड़ें ज्यादा गहरी हैं, हमारे सिस्टम में, हमारी अपनी पहचानों में, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके में भी। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन गहरी जड़ों को थोड़ा कुरेदें, समझें।
बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरुआत लेखक से करते हैं। एज्रा क्लाइन है कौन, और मतलब उनकी बात में ऐसा क्या खास है जो हमें सुनना चाहिए?
देखिए, एज्रा क्लाइन अमेरिका के काफी जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उन्होंने वॉक्स नाम की एक न्यूज वेबसाइट शुरू की थी, जो शायद आपने सुनी हो।
हाँ हाँ वॉक्स तो काफी मशहूर है, वो मुश्किल चीजें आसानी से समझाते हैं।
बिल्कुल, वही उनकी पहचान है। आजकल वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, उनका अपना पॉडकास्ट भी काफी चलता है।
लेकिन राजनीति पर लिखने वाले तो और भी बहुत हैं। क्लाइन में अलग क्या है?
अलग यह है कि वो सिर्फ मतलब आज की घटनाओं पर टिप्पणी करके नहीं रह जाते, वो राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और यहाँ तक कि मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के शोध को अपनी बात का आधार बनाते हैं।
ओह, तो काफी गहरा विश्लेषण करते हैं।
हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है। वो कई अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हैं, जैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इतिहास में क्या बड़े बदलाव हुए, मीडिया का क्या रोल है, राजनीतिक नियम कैसे असर डालते हैं, इन सबको मिला के वो एक पूरी तस्वीर सामने रखते हैं।
अच्छा, यानी वो सिर्फ सतह पर नहीं तैरते बल्कि गहराई में गोता लगाते हैं। तो फिर ये किताब व्हाई वी आर पोलराइज्ड मोटे तौर पर किस बारे में है, क्या है इसका सार?
किताब असल में अमेरिकी समाज के आप कह सकती हैं दो ध्रुवों में बंट जाने की कहानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेताओं या वोटरों की नहीं, बल्कि इस पूरे ढांचे की है जिसमें ये सब हो रहा है। क्लाइन का सबसे बड़ा तर्क शायद यही है कि जो बंटवारा बढ़ रहा है ना,
हाँ,
ये लोगों की कोई नैतिक कमजोरी या गिरावट नहीं है, ये ज्यादातर उन सिस्टम और संस्थाओं की बनावट का नतीजा है जिनमें हम जी रहे हैं।
अरे ये तो बहुत दिलचस्प बात है, मतलब हम सिस्टम को दोष दें लोगों को नहीं।
काफी हद तक क्लाइन नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं कि जिसे हम अक्सर अमेरिका का सुनहरा दौर मानते हैं, है ना, 50-60 का दशक, जब लगता था दोनों पार्टियां मिलजुल कर काम करती थीं।
हाँ, वो समझौता वाला दौर,
वो असल में एक अपवाद था, एक एक्सीडेंट जैसा। तब क्या था कि दोनों पार्टियों के अंदर ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे। डेमोक्रेट्स में भी कंजर्वेटिव थे, रिपब्लिकन्स में भी लिबरल थे, तो उन्हें आपस में ही समझौते करने पड़ते थे।
अच्छा, अंदर ही खिचड़ी पकी हुई थी।
हाँ बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया कि पार्टियां अंदर से तो एक जैसी होती गईं विचारधारा के हिसाब से, पर बाहर से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बन गई।
और ये बदलाव आया कैसे? किताब किन मुख्य चीजों पर फोकस करती है?
किताब कई परतें खोलती हैं। शुरुआत होती है हमारी दिमागी बनावट से कि हम इंसानों में ग्रुप बनाने और हम बनाम वो वाली सोच कितनी गहरी है।
मतलब ग्रुपिज्म।
हाँ बिल्कुल। फिर ये जाती है इतिहास में, खासकर 1960 के दशक के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ जिसे वो कहते हैं ग्रेट सॉर्टिंग।
ग्रेट सॉर्टिंग, ये क्या है?
मतलब एक तरह की बड़ी छंटनी या वर्गीकरण, लोग विचारधारा, नस्ल, धर्म, यहाँ तक कि कहाँ रहते हैं, शहर या गांव, इस आधार पर पार्टियों में बिल्कुल साफ साफ बंट गए।
सब अपनी अपनी टीम में चले गए।
हाँ, और ये सिर्फ राजनीतिक टीम नहीं रही, ये पहचान इतनी बड़ी हो गई, इतनी हावी हो गई कि क्लाइन इसे कहते हैं मेगा आइडेंटिटी।
मेगा आइडेंटिटी
मतलब
जब आपकी पार्टी की पहचान आपकी बाकी सारी पहचानों, धर्म, जाति, इलाका, संस्कृति सबसे जुड़ जाए और उन सब पर हावी हो जाए।
फिर किताब मीडिया के बदलते रोल और राजनीतिक संस्थाओं के असर की बात करती है। ये सब चीजें मिलकर कैसे इस बंटवारे को और गहरा करती हैं, यही किताब का मुख्य विश्लेषण है।
चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा शुरुआत होती है दिमागी बनावट से। क्लाइन कहते हैं हमारे दिमाग समूहवादी या ग्रुपिश हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हम नेचर से ही पैदाइशी तौर पर समूहों में रहना और अपनी पहचान को समूह से जोड़ना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी में एक प्रयोग है मिनिमल ग्रुप पैराडाइम।
मिनिमल ग्रुप
क्या
पैराडाइम?
इसमें दिखाते हैं कि लोग बहुत ही मामूली, मतलब एकदम बेमतलब के फर्क पर भी फौरन ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्का उछाला, हेड आया या टेल्स, बस इसी आधार पर दो ग्रुप बना दिए।
अच्छा।
फिर देखा गया कि लोग फौरन अपने ग्रुप वालों का पक्ष लेने लगते हैं और दूसरे ग्रुप को नापसंद करने लगते हैं, चाहे उस ग्रुप का कोई मतलब हो या ना हो।
अरे बाप रे, मतलब ये हम और वो करना तो हमारी फितरत में है।
बिल्कुल। और राजनीति जो है वो इस फितरत को हवा देने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही मंच बन जाती है। जब हमारी राजनीतिक पहचान हमारी बाकी पहचानों से जुड़ जाती है तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर हमला हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी पहचान पर हमला हो रहा है।
हाँ, तब बात तर्क की नहीं रहती, इमोशंस की हो जाती।
Exactly.
तो ये तो हुई दिमागी बात, लेकिन इतिहास ने इसमें क्या रोल निभाया? आपने ग्रेट सॉर्टिंग का जिक्र किया था, ये क्या बला है आखिर?
ग्रेट सॉर्टिंग, हाँ, मतलब एक तरह की बड़ी छंटनी। क्लाइन बताते हैं कि 1960s के दशक तक अमेरिका की दोनों मेन पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, अंदर से काफी मिली जुली थी।
जैसे आपने बताया।
हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी में उत्तर के लिबरल भी थे और दक्षिण के वो डेमोक्रेट्स भी थे जो नस्लवाद के समर्थक, काफी रूढ़िवादी थे। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी में भी ठीक ठाक संख्या में उदारवादी लोग थे। मतलब पार्टियों के अंदर ही विचारों का मिश्रण था।
लेकिन फिर वो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ।
बिल्कुल, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद समीकरण बदलने लगा। नस्लीय मुद्दों पर जो रूढ़िवादी दक्षिणी डेमोक्रेट थे वो धीरे धीरे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ खिसकने लगे।
अच्छा।
और जो उदारवादी रिपब्लिकन थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ आने लगे। ये प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं हुई, दशकों तक चली।
और ये सिर्फ नस्ल तक नहीं रुकी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे धर्म के आधार पर, जैसे इवेंजेलिकल ईसाई ज्यादातर रिपब्लिकन हो गए, भूगोल के आधार पर शहर ज्यादातर डेमोक्रेटिक, ग्रामीण इलाके रिपब्लिकन, और यहां तक कि जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भी पार्टियां एकदम साफ साफ बट गई।
ओह, तो मतलब पार्टियों के अंदर जो विविधता थी वो खत्म हो गई और सारी विविधता अब पार्टियों के बीच की दुश्मनी बन गई।
बिल्कुल सही, क्या बढ़िया कहा आपने। और इसी ग्रेट सॉर्टिंग का सीधा नतीजा है जिसे क्लाइन मेगा आइडेंटिटी कहते हैं।
हाँ, वो मेगा आइडेंटिटी।
जाहिर है, जब आपकी पार्टी, आपकी नस्ल, आपका धर्म, आपका इलाका, आपकी जीवन शैली सबका झंडा बन जाए तो राजनीति आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है, बाकी सब जैसे पीछे छूट जाता है।
और जाहिर है, जब पहचान ही सब कुछ बन जाए तो टकराव तो बढ़ेगा ही। लेकिन इसमें मीडिया का क्या रोल रहा? क्या उसने भी आग में घी डाला?
हाँ, बिल्कुल डाला। क्लाइंट बताते हैं कि पुराने जमाने में, मतलब जब सिर्फ 3-4 बड़े टीवी नेटवर्क्स होते थे अमेरिका में,
हाँ, तब सब लगभग एक जैसी खबरें देखते थे।
बिल्कुल, तो लोगों को दुनिया को देखने का एक साझा नजरिया बनता था कमोबेश। लेकिन फिर आया केबल न्यूज का दौर, फॉक्स न्यूज एक तरफ, MSNBC दूसरी तरफ।
हाँ।
और उसके बाद तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, ये तो है। अब तो हर कोई अपनी पसंद की खबरें सुन सकता है, अपने ही जैसे विचार वाले लोगों के बीच रह सकता है, एक बुलबुला बन जाता है।
एग्जैक्टली, उसी को इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम या सूचना बुलबुला कहते हैं। हर पक्ष को अपनी बात सही साबित करने वाले तथ्य और वैसी ही कहानियां आसानी से मिल जाती हैं। और सोशल मीडिया का तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जो चीज गुस्सा, डर या नफरत फैलाए वो ज्यादा वायरल होती है, ज्यादा शेयर होती है।
हाँ, क्योंकि उससे इंगेजमेंट बढ़ता है।
बिल्कुल, और नतीजा बंटवारा और गहरा होता जाता है।
और क्लाइन एक और बात कहते हैं जो मुझे बड़ी अजीब लगी थी, कि ज्यादा जानकारी मिलने से लोग ज्यादा सहमत नहीं होते बल्कि और ज्यादा असहमत हो जाते हैं।
ये कैसे हो सकता है?
ये थोड़ा चौंकाने वाला है पर सच है। होता यह है कि जानकारी का इस्तेमाल हम अक्सर अपनी पहले से बनी हुई राय को सही ठहराने के लिए करते हैं, न कि उसे बदलने या समझने के लिए।
अच्छा।
हाँ, जो लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक होते हैं, जो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, वो अपनी टीम का बचाव करने में और ज्यादा माहिर हो जाते हैं। उन्हें और तर्क मिल जाते हैं अपनी बात पर अड़े रहने के लिए। तो जानकारी समझ बढ़ाने के बजाय बहस का हथियार बन जाती है।
अरे यार, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब ज्यादा जानना भी हमें करीब नहीं ला रहा। तो हमने मनोविज्ञान देखा, इतिहास का ग्रेट सॉर्टिंग देखा, मीडिया का रोल और ये मेगा आइडेंटिटी। क्या कोई और कड़ी भी है इस कहानी में जो इसे पूरा करती हो?
हाँ, एक और बहुत जरूरी बात क्लाइंट उठाते हैं, वो है नेगेटिव पार्टिसनशिप।
नेगेटिव पार्टिसनशिप मतलब?
इसका सीधा सा मतलब है कि आजकल लोग अपनी पार्टी को पसंद करने से ज्यादा दूसरी पार्टी से नफरत करते हैं।
ओह
हाँ, और यही नफरत, यही डर उन्हें वोट डालने या राजनीति में एक्टिव होने के लिए उकसाता है। अपनी टीम की जीत उतनी जरूरी नहीं रह गई है जितना दुश्मन टीम की हार जरूरी हो गई है।
बापरे, मतलब प्यार से ज्यादा नफरत मोटिवेट कर रही है। और क्या क्लाइंट दोनों पार्टियों को, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को, इसके लिए बराबर जिम्मेदार मानते हैं?
नहीं, यहां वो एक और जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं ये ध्रुवीकरण असममित है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है।
असममित कैसे?
रिसर्च ये दिखाती है कि विचारधारा के स्तर पर रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा तेजी से दक्षिणपंथ यानी राइट की तरफ गई है, और वो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था मतलब सिस्टम के नियमों के प्रति ज्यादा विरोधी हुई है।
ऐसा क्यों? क्लाइन इसका कोई कारण बताते हैं?
हाँ, वो एक बड़ा कारण बताते हैं। पार्टी का जो मुख्य आधार है यानी श्वेत ईसाई वोटर, अमेरिका में उनकी आबादी का प्रतिशत लगातार घट रहा है। इससे उनमें अपनी पहचान, अपना रुतबा खोने का एक डर पैदा होता है, और इस डर की वजह से वो ज्यादा रक्षात्मक, ज्यादा कट्टर हो जाते हैं।
अच्छा, तो ये डेमोग्राफिक बदलाव और उससे पैदा हुआ डर भी एक फैक्टर है। और आखिर में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो नियम कानून हैं, उनका क्या रोल है इस सब में?
क्लाइन कहते हैं कि अमेरिका की राजनीतिक संस्थाएं, जैसे सीनेट का ढांचा है जहां हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे आबादी कितनी भी कम क्यों ना हो, या वो फिलिबस्टर का नियम है जो अल्पमत को भी कानून रोकने की ताकत देता है।
हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहते हैं।
लेकिन नियम शायद उस जमाने के लिए ठीक थे जब पार्टियों के अंदर ही अलग अलग विचार थे और समझौते की जरूरत पड़ती थी।
लेकिन आज के माहौल में,
आज जब पार्टियां 2 कट्टर विरोधी खेमों में बटी हुई हैं, तो यही नियम सिर्फ गतिरोध पैदा करते हैं। वो बहुमत की इच्छा को रोकते हैं और इससे लोगों में गुस्सा और हताशा बढ़ती है। सिस्टम खुद समस्या का हिस्सा बन गया है। वो लोगों की आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा और उस पर अमल नहीं कर पा रहा। इससे लोकतंत्र में ही भरोसा कम होने लगता है।
बाप रे, ये तो पूरी तस्वीर काफी चिंताजनक है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, तो कुछ मुख्य संदेश या सबक क्या निकलते हैं इस किताब से? हमारे लिए क्या है इसमें?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक है, पहचान विचारधारा पर हावी है। आज की लड़ाई विचारों से ज्यादा पहचानों की जंग बन गई है। हम पहले अपनी टीम चुनते हैं, फिर उसके हिसाब से तर्क घड़ते हैं।
हाँ, ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं, भारत में भी। कभी कभी लगता है धर्म, जाति या क्षेत्र की पहचान वो राजनीतिक तर्कों से ज्यादा भारी पड़ जाती है।
बिल्कुल। दूसरा सबक, ग्रेट सॉर्टिंग ने जमीन तैयार की। जब लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से इतने साफ साफ राजनीतिक खेमों में बढ़ जाते हैं, तो उनके बीच कोई पुल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
भारत में भी हम शायद शहरी और ग्रामीण भारत या अलग अलग भाषा बोलने वाले समूहों के बीच ऐसी राजनीतिक सोच का फर्क देखते हैं।
हाँ, दिखता है। तीसरा, नकारात्मक पक्षपात एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरों से नफरत और डर, ये लोगों को एकजुट करने का, मोबिलाइज करने का एक आसान तरीका बन गया है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए या चाय की दुकान पर जो बहसें होती हैं, अक्सर विरोधी की बुराई ज्यादा होती है, अपनी अच्छाई कम।
ये बात तो है।
चौथा, ज्यादा जानकारी का मतलब ज्यादा समझदारी नहीं है। सूचना के इस बाढ़ वाले युग में ये सोचना कि बस ज्यादा जानकारी दे दो तो सब ठीक हो जाएगा, शायद ये भोलापन है। जानकारी अक्सर हमारी अपनी धारणाओं को और पक्का करने का औजार बन जाती है। और पांचवा जो शायद सबसे जरूरी है, सिस्टम की समस्याओं का हल सिस्टम में ही खोजना होगा। क्लाइन बार बार कहते हैं कि सिर्फ लोगों से अपील करने से कि भाई अच्छा बनो, नफरत मत करो, इससे बात नहीं बनेगी। जब तक राजनीतिक नियम, चुनाव का तरीका, मीडिया का बिजनेस मॉडल नहीं बदलेगा, तब तक असली बदलाव मुश्किल है। समस्या लोगों की नीयत में उतनी नहीं है जितनी सिस्टम की बनावट में है।
ये बहुत अहम बात है। किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो इन विचारों को और मतलब यादगार बना दियो, कुछ कोट्स।
हाँ हाँ, कई हैं। जैसे ग्रेट सॉर्टिंग के बारे में वो कहते हैं, जब सामाजिक समूह पार्टियों के साथ एक सीध में आ जाते हैं तो पार्टी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और देश ज्यादा ध्रुवीकृत। ये बिल्कुल सटीक बताता है कि इस छटनी का नतीजा क्या हुआ।
वाह, और वो जानकारी वाली बात पर।
उसके लिए ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगी। पक्षपाती लोगों को जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है वे उतने ही ज्यादा असहमत होते हैं। ये आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का कड़वा सच है ना?
हाँ बिल्कुल। और पहचान की राजनीति के मनोविज्ञान पर
ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। खतरे के सामने लोग अपने समूह को छोड़ते नहीं हैं, वे उनसे और कसकर जुड़ जाते हैं। ये समझाता है कि डर और असुरक्षा पर आधारित राजनीति इतनी कामयाब क्यों होती है। लोग खतरा महसूस करते हैं तो और ज्यादा अपनी टीम से चिपक जाते हैं।
और सिस्टम वाली बात पर
उनका ये कहना कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था टूटी हुई नहीं है, ये वही कर रही है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन वो डिजाइन अब हमें तोड़ रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो नियम कल तक ठीक थे वो आज के बदले हुए माहौल में कैसे समस्या बन गए हैं।
ये सब जानने के बाद मन में सवाल उठता है कि भाई हम मतलब आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं, क्या इस किताब से कुछ व्यावहारिक सीख मिलती है जिसे हम अपना सकें?
हाँ बिल्कुल मिलती हैं। मुझे लगता है पहली सीख है आत्म जागरूकता की। मतलब जब भी किसी राजनीतिक खबर पर या किसी बहस में हमें तेज गुस्सा आए तो एक पल रुककर सोचें, यह गुस्सा किस बात पर है? क्या यह किसी तर्क या तथ्य पर है, या सिर्फ इसलिए कि मेरी टीम वाली पहचान को चोट पहुंची है?
अच्छा, खुद को समझना।
हाँ, यह हमें अपनी भावनाओं को बेहतर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दूसरा है मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये याद रखना कि खासकर सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनल भी हमें भावनात्मक रूप से भड़काने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं।
हाँ, उनका बिजनेस मॉडल ही यही है।
बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें, खासकर उन स्रोतों से भी जो हमारी राय से अलग हों, और उस तरह के कंटेंट से बचें जो सिर्फ गुस्सा दिलाने वाला या नफरत फैलाने वाला लगे।
ये मुश्किल है पर जरूरी है, और जब दूसरों से बात करें तब
शायद बहस का तरीका बदलें। जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें, सामने वाले के लिए वो मुद्दा इतना अहम क्यों है, उसकी किस चिंता या पहचान से वो बात जुड़ी हुई है। शायद इससे आप सहमत ना हो, पर कम से कम कड़वाहट थोड़ी कम हो सकती है। एक दूसरे को सुनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
सही का, ये वाकई मुश्किल है पर शायद कोशिश करने लायक है। और कुछ?
और चौथा जो मुझे बहुत जरूरी लगता है, अपनी गैर राजनीतिक पहचानों को मजबूत करें। मतलब अपने पड़ोस में, अपनी हॉबी में, खेल कूद की टीम में या किसी सामाजिक काम में हिस्सा लें। ऐसी जगह जहां अलग अलग राजनीतिक सोच के लोग किसी और मकसद से साथ आते हैं।
हाँ, जहां राजनीति मुद्दा ना हो।
बिल्कुल। वहां हम दूसरों को सिर्फ विरोधी के लेबल से देखना बंद कर देते हैं। जब हम किसी को अपने पड़ोसी, दोस्त या टीम के साथी के रूप में जानते हैं तो उसे सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन मानना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी इंसानियत को जगाता है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हमें समस्या की जड़ को देखना होगा। ये सिर्फ कुछ बुरे लोग नहीं हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे नियम हैं जो हमें बांट रहे हैं। शायद हमें दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय उन नियमों और ढांचों पर सवाल उठाने की जरूरत है जो इस टकराव को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात, या कहूं कि आंखें खोलने वाली बात, ये थी कि शायद वो दौर जिसे हम अच्छा या सहमति का दौर मानते थे वो असल में असामान्य था, वो नॉर्मल नहीं था।
हाँ।
और क्लाइन का ये कहना कि हमें ध्रुवीकरण को खत्म करने का सपना देखने के बजाय उसे संभालने, मैनेज करने के तरीके खोजने होंगे, ये ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और इसके लिए सिर्फ अच्छी बातें करने से या नैतिकता का पाठ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम में बदलाव लाने होंगे। चुनाव कैसे होते हैं, मीडिया कैसे रेगुलेट होता है, इन सब में सुधार की जरूरत है।
ये सोचना कि समस्या शायद व्यक्तियों में उतनी नहीं है जितनी संरचनाओं में है, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि हम इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। ये हमें शायद निराशा से निकालकर समाधान की ओर सोचने को प्रेरित करता है। बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा रही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।